యమునా తీరవన చారి యమునా తీరవన చారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ హరి కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే జయ రాధా వృందావన్ బిహారీ రాధా వృందావన్ బిహారీ రాధా వృందావన్ బిహారీ రాధే రాధే జయ వైష్ణవ్ ఠాకూర్ 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 జై శ్రీ వైష్ణవ్ ఠాకూర్ కీ జయ శ్రీల గోపాల్ భట్ట గోస్వామి తిరోభావ మహామహోత్సవ్ కీ జయ శ్రీల లోక్నాథ్ గోస్వామి పాద తిరోభావ మహోత్సవ్ కీ జయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के संध्याकालीन सत्र में। तो आज दो बड़े उत्सव हम मनाने वाले हैं। तो दो तीन दिन पहले श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव था, तो वो कार्यक्रम वो उत्सव भी हम आज ही मनाएंगे। और श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद, तो दोनों महान आचार्यों का आज हम उत्सव मनाने वाले हैं। तो ऐसा कहा है कि येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुद्धिन्ति वैश गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। यानी कि महान वैष्णवों का केवल स्मरण करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुद्धिन्ति वैश गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श, अगर उनको दर्शन करने मिले, अगर उनको स्पर्श करने मिले, अगर उनकी सेवा करने मिले, तो और कितना बड़ा भाग्य हमारा होगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज के ऊपर श्री नरसिंहदेव अत्यंत संतुष्ट होते हैं और उनसे कहते हैं, उनको वर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? य एतत् कीर्तयत मह्यम त्वया गीतम इदम नरः। आपने जो मेरा गुणगान किया है बिल्कुल उसी को कोई अगर दोहराएगा भी वैसे का वैसा, त्वया गीतम इदम नरा त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। जो मुझे और आपको दोनों को स्मरण करेगा, भगवान को स्मरण करना है और भगवान के भक्तों को स्मरण करना है, तो स्मरण से क्या होगा? कर्म बंधात प्रमुच्यते। तुरंत वो क्या होगा? हमारा जो ये संसार में अलग अलग प्रकार का बंधन है वो खुल जाएगा। तो इसलिए ऐसे महोत्सव के दिन बड़े आचार्य वैष्णवों को स्मरण करना, उनका गुणगान करना, तो उससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और उनके वैष्णवता गुण का एक लेश भी अगर हमारे जीवन में उतरता है तो क्या होगा? हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का आज तिरोभा महोत्सव हम मना रहे हैं। तो उनके वो श्री चैतन्य महाप्रभु के सहाध्यायी थे, साथ में उनके समान आयु के थे। और उनके पिता का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती, उनकी माता का नाम था सीता देवी। और वो तलखैना करके एक गांव है जेसोर जिले में, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनके जो पिता थे पद्मनाभ आचार्य, पद्मनाभ चक्रवर्ती, वो अद्वैताचार्य के खास संगी थे। और बचपन में ही उनका क्या हुआ था कि अपने संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई थी, तो अपना घरदार छोड़ के वो नवदीप चले आए महाप्रभु के शरण में। तो महाप्रभु की शरण वो लिए नवदीप में आकर। महाप्रभु ने उनको बताया कि आप वृंदावन चले जाओ करके, और उनकी विरक्तता को देखकर उन्होंने आदेश दिया, आप वृंदावन चले जाओ, मेरा बहुत सारा कार्य बाकी है वृंदावन में जो मैं आप आपकी बहुत सहायता की अपेक्षा है। तो भगवान के विविध जो क्रियाकलाप हैं उसमें भगवान के जो सारे पार्षद हैं उनका बहुत क्या है योगदान है। तो कहाँ पे किसका कैसा योगदान है हमको पता नहीं, लेकिन भगवान को ही मालूम है कि उनके कैसे पार्षदों को किस रूप में वो उपयोग में लाए। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के ये बड़े मिशन में हम में से प्रत्येक का कुछ ना कुछ योगदान है जो हमको अभी पता नहीं है कि क्या योगदान है। लेकिन अगर कोई, हाँ जैसे कोई कोई मैच चल रहा हो, फुटबॉल का मैच या क्रिकेट का मैच, तो किन किन जो सीटों को, जो सीट पर वो बैठे हैं उनको लाल कलर की टोपी देते हैं, बोले आप ये टोपी पहनना। फिर किन किन सीट नंबर दिए हैं उनको हरे कलर की टोपी देते हैं, उनको पता नहीं है कि क्यों वो टोपी पहनाइए उनको। तो तो जब भी उनको कहा जाता है कि आप ये टोपी पहनो, बस उनको अपना काम करना है। और जब भी ऊपर से जब दिखाते हैं, हाँ पूरे स्टेडियम में लोग बैठे हैं और ऊपर से दिखाते हैं, तो समझ में आता है कि ये इस प्रकार से अलग अलग सीटों को अलग अलग कलर रंग देने का ये क्या था, उद्देश्य क्या था। कि मान लो कोई हाँ स्टैंड है कोई, जहाँ पे भारत के तरफ से अगर खेल रहे हैं मान लो, तो उसमें हाँ ऊपर से दिखाई देता है कि वो टोपियों का एक अक्षर निर्माण हो जाता है, जीते रहो इंडिया या जो भी है ऊपर से दिखता है, लेकिन वो पहनने वाले को मालूम नहीं कि मेरा क्या रोल है। तो बिल्कुल शायद से ऐसा हो सकता है कि हमको हमारे जीवन में पता नहीं कि अरे मैं ये प्रभुपाद जी के मिशन में मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन हमने अगर अपना रोल अच्छे से निभाया तो ऊपर से आचार्य लोग देख रहे हैं कि बराबर क्या हो रहा है ये उसका जो गठन है उससे एक विशेष कार्य उससे क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो वृंदावन जाने की आज्ञा देते हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन चले जाते हैं। और बाद में पश्चात उनको पता चलता है, अरे अभी मैं महाप्रभु से मिलूंगा कभी। उनको खबर आती है कि महाप्रभु दक्षिण यात्रा चले गए, दक्षिण भारत की। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा चले जाते हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी भी सोचते हैं मैं भी दक्षिण यात्रा जाके दर्शन लूंगा। दक्षिण में पहुंच जाते हैं तो खबर मिलती है महाप्रभु वृंदावन चले गए। तो बोलते हैं अरे मैं तो वृंदावन में रहता था तो कितना अच्छा होता, मुझे महाप्रभु के दर्शन हो जाते। तो तुरंत व्रज की ओर चल देते हैं लोकनाथ गोस्वामी। जब वृंदावन पहुंचते तो पता चलता है महाप्रभु 2 महीने के लिए रुके थे वृंदावन, लेकिन अभी प्रयाग के लिए चले गए। तो लोकनाथ गोस्वामी विचार करते हैं, अरे मैं कितना दुर्भागी हूँ कि मुझे महाप्रभु के दर्शन ही नहीं हो रहे, चलो कल सुबह उठकर मैं प्रयाग के लिए चला जाता हूँ। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे लोकनाथ, आपको प्रयाग आने की आवश्यकता नहीं है, चलो आपकी जो इच्छा थी मुझे देखने की मैंने आपके सपने में ही पूर्ण कर दी है, अभी आप क्या करो वृंदावन में ही रहो, आगे रूप सनातन गोस्वामी आएंगे उनका आप उनको आप संग दो, वृंदावन में आएंगे तभी। और आगे मैं एक मेरे भक्तों को भेजूंगा नरोत्तम दास ठाकुर करके, उनको आपको दीक्षा देना है, तो ये सारे कार्य आपको करने हैं, तो आप वृंदावन ही चले जाइए। तो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन ही रुकते हैं फिर लोकनाथ गोस्वामी। और वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है किशोरी कुंड, एक जहाँ पे राधा रानी का अभिषेक हुआ था, कि ये राधा रानी वृंदावनेश्वरी है। हम क्या कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो उनका सारी सखियों ने, वृंदा देवी ने अभिषेक किया था, यही सम्राज्ञी है पूरे वृंदावन की, महाराजनी है, ईश्वरी है वृंदावन की। तो इसलिए उस जगह का नाम हाँ क्या छत्रवन हुआ, उनके सर के ऊपर छत्र धरा पकड़ा था तो छत्रवन, और छत्रवन में अभिषेक हुआ। तो अभी कुछ कुछ अरबी या फारसी जो शब्द हैं वो हिंदी में भी प्रचलित हो गए हैं, आपने देखा होगा, जैसे स्मित को मुस्कान कहते हैं, अभी लोग समझते हैं कि ये हिंदी शब्द है, लेकिन ये आया कहाँ से है, हाँ मुगलों के आक्रमण के बाद बहुत सारे फारसी उर्दू और अरबी शब्द हिंदी में उपयोग होना चालू हो गया, और आजकल के फिल्मों की वजह से और ज़्यादा, कि ज़्यादा करके उर्दू और वो शब्द ही उसमें उपयोग होते हैं, इस्तेमाल होते हैं तो इस प्रकार से उमराव ये युवराजनी के लिए अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, तो इसलिए गांव का नाम भी पड़ गया उमराव। तो और उसके वहाँ पर किशोरी कुंड करके है, वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी कई दिनों तक ध्यान लगाकर बैठ गए, और उनके मन में अत्यंत इच्छा थी कि मैं भगवान के विग्रहों की सेवा करूँ, भगवान के विग्रहों की सेवा करूँ। यहाँ पे अपने पास कितने विग्रह हैं, राधा वृंदावन बिहारी है, राधा मदन मोहन है, गिरिराज महाराज हैं, 7 जो मंदिर है गोस्वामियों के, वो सारे हैं। हाँ, उसके पश्चात गोपीश्वर महादेव है, कात्यायनी है, व्यासदेव है, बहुत सारे विग्रह हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी को बहुत इच्छा हुई कि मैं किसी विग्रहों की सेवा करूँ। तो ऐसा वो जब सोच रहे थे तो महाप्रभु ने ही एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में आकर उनको ये जो क्या किया, ये जो राधा विनोद के जो दो विग्रह हैं ये उनको प्रदान किए और उनको कहा कि आपकी इतनी इच्छा है, ये सोचकर राधा कृष्ण स्वयं आपके पास आ गए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप आपके पास स्वयं आ गए। तो सेवा की जितनी तीव्र इच्छा हो उतने भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे एक बताते हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनके एक पुस्तक में बताते हैं तुषार्थ पथिक या उसको जर्नी जर्नी होम, तो उसमें बताते हैं कि वहाँ पे वृंदावन में एक घनश्याम दास बाबा करके रहते थे। तो वो क्या करते थे, उनको विग्रहों की सेवा करने की अत्यंत बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके पास कोई विग्रह ऐसा थोड़ी उनको बना के देंगे। आज अगर आप जाओगे लोही बाजार में तो काफ़ी लक्ष्मी की आवश्यकता है, अगर आपको ब्रास के विग्रह चाहिए ऐसे हाँ तो कैसे मिलेंगे। तो मन में बहुत उनकी इच्छा थी, लेकिन फिर वो क्या करते थे कि जमीन के ऊपर ही राधा कृष्ण का नाम लिख देते थे और उनकी पूजा करते थे, उनको फूल अर्पण करते थे और प्रार्थना करते थे कि कभी ना कभी विग्रह के रूप में मैं आपकी सेवा करूं, और बाद में उसको मिटा देते थे कि कोई किसी का उसके ऊपर पैर ना गिर जाए, पैर ना पड़ जाए। तो ऐसे एक दिन राधा कृष्ण का नाम लिखा उन्होंने भूमि के ऊपर, कोई पवित्र भूमि ढूंढते थे उसके ऊपर राधा कृष्ण का नाम लिखते थे, उसका पूजा अर्चना करते थे और प्रार्थना करते थे कि कब आप विग्रह के रूप में मुझे मिलेंगे। ऐसा करके वो पोषना चालू किए, वो और पोषना चालू किए तो हाथ को कुछ एकदम कठिन कठिन सा कुछ लगा उनको, तो देखा उन्होंने और उधर ज़्यादा खोदा उनको उन्होंने, तो राधा गोपीजन वल्लभ के विग्रह उनको जमीन के नीचे मिल गए। जहाँ पे उन्होंने राधा कृष्ण का नाम लिखा था वहाँ पे पोछते पोछते मिट्टी को इधर उधर करते करते उनको भगवान के विग्रह मिल गए। तो ऐसे भक्त के इच्छा के अनुरूप कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ति विनु नहे अन्य कृत्य। भगवान का क्या एक ही कृत्य है, क्या कृत्य है, भृत्य वांछा पूर्ति, जो भक्त मांगे उसकी वो क्या करेंगे, पूर्तता करेंगे। केवल हमको अच्छे तरीके से सेवा की प्रार्थना करनी चाहिए, अभिलाषा करनी चाहिए, तो तुरंत भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। तो ये लोकनाथ गोस्वामी जी के उदाहरण से समझ में आता है। फिर रूप और सनातन गोस्वामी, जब भी उनका तिरोभाव हुआ उसके पास लोकनाथ गोस्वामी अत्यंत हृदय में व्याकुल हुए, अरे रूप गोस्वामी नहीं है, सनातन गोस्वामी नहीं है, तो मैं कैसे ये जीकर क्या करूँ, मैं वृंदावन में भी जीकर मैं क्या करूँ, ऐसा सोचने लगे। हाँ, इसलिए बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि वृंदावन भी वैष्णवों के संग में ही लाभ हो सकता है, महान वैष्णवों के संग में, गुरु के संग में ही वृंदावन का लाभ हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं लोकनाथ गोस्वामी की जो ये भावना है विरह की, उसको ही रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे पवित्र जगह कौन से है गौड़ीय वैष्णव के अनुसार, राधा कुंड। तो कह रहे व्याघ्र तुंडायते कुंडम, राधा कुंड को जब मैं देखता हूं तो मुझे शेर का मुंह याद आ जाता है। अरे ये तो दुनिया का सबसे पवित्र, वैकुंठ से भी पवित्र, वृंदावन में भी सबसे पवित्र है, तो राधा कुंड को देखकर आपको शेर का मुख कैसे याद आ जाता है, व्याघ्र का, व्याघ्र तुंडायते कुंडम। और राधा कुंड कहाँ पे है, जो सबसे महान लीला स्थली है, गोवर्धन में है। तो बोलते हैं गिरिम अजगर आए थे, जो ये गोवर्धन गिरी है वो मेरे को एक अजगर की तरह दिखाई दे पड़ता है। और पूरा ये गोवर्धन कहाँ पे है, ब्रजमंडल में है, वृंदावन में है। हाँ, तो कहते हैं कि शून्यायते गोष्ठम, पूरा गोष्ठ मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, शून्य दिखाई दे रहा है। क्यों, जीवातु रहितस्य में, क्योंकि मेरे पास रूप गोस्वामी नहीं है, सनातन गोस्वामी नहीं है। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में उनको ऐसी भावना उनकी हुई। और वो सबसे विरक्त होके खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया, कम कम से कम खाते थे और ज़्यादातर भजन करते थे। तो उसी समय श्रील नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ आए और उन्होंने कहा मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। लोकनाथ महाराज ने कहा कि नहीं, मैंने तो प्रण लिया है कि किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, और वैसे भी रूप सनातन गोस्वामी जाने के बाद मुझे तो कुछ जीवन में स्वारस्य नहीं है, तो इसलिए आप किसी और से दीक्षा ले लीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते नहीं, मुझे महाप्रभु ने आदेश दिया आपसे ही दीक्षा लेना है। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं ठीक है, थोड़े दिन बाद सोचेंगे। तो एक साल भर तक लोकनाथ गोस्वामी सुबह जहाँ पे शौच करने के लिए जाते थे वो जगह, सोचिए, नरोत्तम दास ठाकुर एक राजा के बेटे थे, एक बड़े जमींदार के बेटे थे, और वैसे होकर भी एक हाथ में झाड़ू लेकर, और उस समय कुछ सैनिटाइजर नहीं था, और हाँ जो क्या हैंड ग्लोव्स नहीं थे कि अरे चलो ग्लोव्स डाल के किया जाए ये काम। तो पूरा हाथ से सब साफ करते थे, और लोकनाथ गोस्वामी के लिए एक स्वच्छ जो मिट्टी का जो एक ऐसा ढेर रचाते थे उधर। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचते थे इतना सुबह आकर ये सब कौन करता है। तो एक दिन थोड़ा जल्दी आकर देखते हैं, एक साल के बाद, तो देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर अपने हाथ से सब कुछ साफ कर रहे हो। कहते नरोत्तम नरोत्तम, ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो एक राजा के बेटे हो, तुमको ये शोभा नहीं देता ये सब करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभो, आप तो मेरे गुरु, मैंने गुरु के समान स्वीकार किया है, हाँ, तो आपकी सेवा से बढ़कर और कोई भाग्य मेरे लिए नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी ये सोचकर देखकर मन में निश्चय करते हैं कि मैं इनको दीक्षा दूंगा करके। तो एक ही शिष्य का उन्होंने स्वीकार किया, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। और इस प्रकार से कैसे सेवा से हम गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं, हाँ, उसके बारे में बताया है। अगर छल कपट किया तो विद्या प्राप्त होकर भी हाँ काम में नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर हाँ कर्ण, तो क्या किया उसने, परशुराम जी को फंसाया, हाँ, और फंसा कर छल कपट से विद्या प्राप्त की। तो परशुराम जी ने क्या बताया अंत में, कि जब भी तुमको आवश्यकता होगी सब भूल जाओगे। तो इस प्रकार से छल कपट से नहीं, सेवा भाव से ही गुरु को संतुष्ट किया जा सकता है। और उसके उलट पक्ष में कृष्ण सुदामा ने जैसे सांदीपनि मुनि का सेवा किया, एकदम निर्विलीक भाव से सेवा किया, तो सांदीपनि ऋषि मुनि ने उन्होंने क्या किया, वरदान क्या दिया, कि मैंने जो आप कुछ आपको जो सिखाया है वो जन्म जन्मांतर आपके हृदय में ताजा रहेगा। वो जो मेरा जो सीख है, मतलब जरूरत पड़ने पर आपको अवश्य याद आएगा, स्मरण होएगा। तो इस प्रकार से कैसे गुरु को संतुष्ट करने का जो विधि है वो यहाँ पे बताया है, जो उसकी महिमा है उसके बारे में बताया है। तो ये थोड़ा हमने लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में बताया। अंत में देखेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर को चार शिक्षाएं उन्होंने दी। पहली शिक्षा, सावधानता से श्री विग्रहों की सेवा करो, सावधानी पूर्वक। यानी कि हम ऐसे कभी कभी अति परिचयाद अवज्ञा कहते हैं, आपने वो सुभाषित सुना रहेगा, अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति, मलये भिल्ल पुरंद्री चंदन तरु काष्ठम ईंधनम कुरुते। यानी कि अति परिचयाद अवज्ञा, बहुत ज्यादा जिसके साथ परिचय बढ़े तो क्या होता है, अवज्ञा हो जाती है, अवज्ञा करना चालू करते हैं, अरे तो हमारे साथी हैं, वैष्णव हो या विग्रह हो भगवान के। संत तक गमनाद अनादर हो बहुत, जिसके घर ज्यादा आना जाना होता है उससे अनादर हो जाता है। पहले दिन आपका स्वागत करेंगे, हाँ आओ बैठिए, क्या खाएंगे, आज ये स्पेशल बनाया है। दूसरे दिन अगर गए तो उसी समय गए तो खा कर तो आए होंगे आप। और तीसरे दिन शायद से कहेंगे चलो अभी हम बाहर जा रहे हैं, हाँ आप भी पधारिए, आपको रुकना है तो रुक सकते हैं। तो संत गमनात अनादरो भवति, कैसे, मलये भिल्ल पुरंदरी चंदन तरु काष्ठम इंधनम कुरुते। तो मलय पर्वत के ऊपर भिल्ल स्त्री है, तो मलय के ऊपर क्या उगता है, चंदन उगता है, तो इतना प्रचुर मात्रा में उगता है कि चंदन की लकड़ी है सब जगह पर।
तो भिल्ल स्त्री क्या करती है, साधारण लकड़ी समझ के उसको जला देती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता ये चंदन की लकड़ी है। क्यों? क्योंकि बार बार उसका सुगंध लेने से अभी क्या है, उसको लगता है कि साधारण हवा का ऐसे ही सुगंध रहता है जैसे चंदन का मिश्रित वायु का जो सुगंध है उसको लगता है हाँ ये साधारण हवा ऐसी होती है, ऐसा लगता है उसको। तो बिल्कुल उसी प्रकार विग्रहों के साथ रह रह कर हमको भगवान के चंदन जैसे स्पर्श का अनुभव होता है हमारे जीवन में, लेकिन सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है। अरे इतने कोई कोई पूछते हैं, अरे इतने में दिनों से मैं जप कर रहा हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अति परिचय दवन्य। तो अगर उल्टा अगर कोई जप करना बंद कर दें तो उसको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है तो जो जप उसको संभल रहा था वो कैसे संभाल रहा था, इसलिए ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, चलो बंद करके देखता हूँ करके लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से विग्रहों की अच्छे से सेवा करो। दूसरा, काया वाचा और मन से वैष्णवों का सम्मान करो। काया से, मन से और वाचा से वैष्णवों का सम्मान करना है। तीसरा बताया कि विष्णु और वैष्णव के संबंधित दिनों को सावधानता से उत्सव मनाइए। यानी कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए चलो आज थोड़ा आलस है आज नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं। कि जितना उत्साह है अपने पास उसके साथ हमको क्या करना है, वो विष्णु संबंधी उत्सव यानी जन्माष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, एकादशी, ये सब क्या उत्साह के साथ उसका हमको मनाना है। और चौथा उपदेश दिया, वैष्णव के साथ में भक्ति अंगों का आस्वादन करो यानी भागवत श्रवण इत्यादि, वैष्णव के साथ में उसका आस्वादन करो। ये चार ही शिक्षाएं हैं। जय श्री श्री गिरिराज महाराज की जय। तो यहाँ पे हमने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में सुना, अभी हम थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर के माफ कीजिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में सुनेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका जन्म हुआ श्रीरंगम के बाजू में एक वेलंगुड़ी करके गांव है, वेलंगुड़ी क्षेत्र में। उनके पिता का नाम था वेंकट भट्ट और माता का नाम था सदम्बा। सदम्बा और वेंकट भट्ट उनके सुपुत्र थे और वो इतने बड़े वैष्णव थे कि रंगनाथ के प्रसाद को छोड़कर और कुछ नहीं खाते थे केवल रंगनाथ का जो महाप्रसाद है उतना ही ग्रहण करते थे, जितना उस दिन मिला उतना ग्रहण करते थे, और कुछ नहीं मिला तो और कुछ नहीं खाते थे। तो ऐसा पूरा परिवार पहले से ही वैष्णव था, पूर्ण भगवान को अर्पण किया हुआ शुद्ध प्रसाद ही अर्पण ग्रहण करते थे। और एक दिन वेंकट भट्ट के सपने में ऐसा आया, एक साक्षात्कार उनको हुआ कि कोई तो महान दिव्य व्यक्ति जो है उनके हृदय में प्रवेश करती है, एकदम ज्योतिर्मय उनका रूप है और उनके हृदय से वो सदम्बा के कोख में गर्भ में प्रवेश कर रही है, ऐसा उनको अनुभव होता है। और दूसरे दिन क्या होता है, उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी जो है गर्भवती है। तो और कुछ मासों के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव हो जाता है कावेरी के तट पर, माघ कृष्ण तृतीया के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव हो जाता है। तो कोई सोचेगा अरे महाप्रभु तो ठहरे नवद्वीप में और आप कह रहे हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके नित्य पार्षद हैं, नित्य नवद्वीप में उनके संगी हैं, तो ये श्रीरंगम में जाकर किधर जन्म हुआ उनको? ये उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बंगाल से तमिलनाडु जाने के लिए कितना समय लगेगा, एक महीने से ऊपर लगेगा, दो महीने लगेंगे चलते चलते रोज अगर चले तो इस प्रकार से ज़्यादा लगेगा शायद से। तो एक पार्षद इधर, दूसरा पार्षद इधर, तीसरा पार्षद इधर, ऐसा कैसा हो गया? तो एक बार कृष्णचंद्र प्रभु का मैंने क्लास सुना था, उसमें बताते हैं कि जैसे दूसरे महायुद्ध में अगर किसी सैन्य के ऊपर आक्रमण करना है तो वो जो देश के सैनिक हैं एक बड़े हवाई जहाज में बैठते थे और पैराशूट से जंप मार देते थे, पैराशूट के सहारे कूद मारते थे दूसरे महायुद्ध के समय में, और जो पैराशूट उनको जहाँ पे लेके जाएगा वहाँ जाके वो गिर जाते थे। अभी हवा को थोड़ी बता सकते हो मुझे इधर ही गिराना है, हवा जिधर लेके जाएगी उधर वो गिर जाते थे। और बाद में वापस संगठित हो जाते थे मिशन को पूर्ण करने के लिए, समझ में आ रहे? तो बिल्कुल महाप्रभु के भी जो पार्षद है वो आध्यात्मिक जगत से पैराशूट लेकर कूद मारे, और जो अलग अलग जगह पे वो गए, कोई श्रीरंगम में, कोई वाराणसी में, कोई बांग्लादेश में, और बाद में सब इकट्ठा हुए। श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसा कहते थे, वो कहते थे कि ये जो शिष्य हैं, इतने सारे शिष्य अमेरिका यूरोप में, ये सारे जो हैं ये मेरे गुरु ने भेजे हुए हैं, मेरे गुरु ने ही उनको जगह जगह पे क्या डाला है, नियुक्त किया है, और मेरे को बस जाके उनको क्या करना है, प्रचार करना है। तो ये मेरे गुरु ने ही भेजे हुए हैं अलग अलग जगह पे। श्रील प्रभुपाद जी का इतना विश्वास था कि प्रभुपाद जी उनके जो बचपन में ज्योतिष ने उनको बताया था कि आप 108 मंदिर बांधेंगे, मतलब उनके माता पिता को बताया था, ये बड़े वैष्णव बनेंगे, पूरे भारत पूरे विश्व में प्रचार करके 108 मंदिर बांधेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भी उनके शिष्य के साथ वार्तालाप कर रहे थे बहुत शुरुआत के दिनों में, तो उसके पश्चात उनके शिष्यों ने कहा कि ये मंदिर कैसे आएंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोले मालूम है आपको? हाँ, अभी तो हम केवल न्यूयॉर्क के एक गांव में प्रचार हो रहा है, तो ये सारे 108 मंदिर कहाँ से आएंगे? प्रभुपाद जी क्या बोले मालूम है? वो बोले, प्रभुपाद जी कहें कि मंदिर तो पहले ही बन चुके हैं, उसका एड्रेस मुझे मिलना बाकी है। उसका एड्रेस बस मिल जाए तो मैं उधर जाके बस एक क्या साधन का काम करूंगा, मैं मंदिर तो बन चुके हैं, बस एड्रेस मिलना, एड्रेस मुझे मालूम नहीं है अभी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का इतना विश्वास था, अलग अलग जगह पर प्रभुपाद जी के पार्षद पहले से ही उधर हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास उनको था, उनके गुरु महाराज ने उनको पहले से उनको भेज के रखा है। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम में अवतीर्ण हुए। बचपन से वो क्या करते थे? विग्रहों की उपासना और हरिनाम संकीर्तन करते थे बचपन से। और महाप्रभु जब श्रीरंगम में आए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी 11 साल के थे, और तब तक उनकी सारी शिक्षा, व्याकरण, संस्कृत सब कुछ पूर्ण हो चुका था। तो बहुत ही बड़े महान विद्वान भी थे उसी समय वो, और केवल विद्वान नहीं, एक महान वैष्णव थे। तो महाप्रभु ने उनको सबसे प्रथम गोपाल करके बुलाया, गोपाल कृष्ण का नाम जपो, तो तब से उनका नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी हो गया। महाप्रभु ने उनका नामकरण किया। और महाप्रभु का वो सन्यास का वेश देखकर एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी फूट फूट कर रोने लगे, 11 साल के थे केवल, और कहने लगे, हे विधाता ने मुझे यहाँ पे दूर देश में ही जन्म क्यों दिया, मुझे बंगाल में नवद्वीप में जन्म क्यों नहीं दिया, हाँ मुझे यह सन्यासी रूप देखना पड़ा महाप्रभु का। वृंदावन में तो मैंने सुना है उनका नवद्वीप नटवर रूप है, सुंदर सुंदर लंबे बाल है, पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, और फूल की मालाओं से खुद को सजाया है, और हरिनाम संकीर्तन करते करते आँखों से मोती जैसे अश्रु बिंदु उनका पात हो रहा है, तो ये दृश्य मेरे को क्यों नहीं देखने को मिला? मुझे देखने को मिला कि पूरा सर का मुंडन किया हुआ है, केशों का मुंडन किया हुआ है, और ये रूप में मुझे देखने को मिल रहा है। हाँ, तो भगवान के जो निजी पार्षद हैं, हाँ जो ज्ञानी हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? संन्यास वेश में, हाँ हाँ, कैसा वस्त्र, कषाय वर्ण का वस्त्र परिधान किया है, और माथे का मुंडन किया है, और हजारों सूर्यों की तरह उसकी आभा है, ऐसा उनको पसंद आता है। लेकिन भक्तों को कौन सा रूप पसंद आता है? भगवान का जो सुंदर सुंदर बाल हैं, सुंदर सुंदर वेश परिधान है, तो ये रूप उनको अधिक। तो हर एक का अपने अपने रुचि के अनुसार भेद है। एक बार एक कथा में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि कृष्ण जब ही हस्तिनापुर से द्वारका वापस आ रहे थे, तो द्वारका में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपना पांच जन्य को मुख को लगाया, और एक दिव्य ध्वनि उस शंख से निर्माण हुआ, और सारे द्वारकावासी आतुर थे कि अरे कब से वो स्वर सुनना चाहते थे, शंख का स्वर। तो उन्होंने पूछा, आप में से कितने जन कृष्ण का ये शंख का स्वर सुनने के लिए उत्सुक होंगे, हाथ ऊपर कीजिए। तो लगभग सब ने हाथ ऊपर ऊपर किया था। आप यहाँ पे भी मैं पूछता हूँ, आप में से कितने जन कृष्ण का वो जो ध्वनि है, शंख का ध्वनि, वो सुनने के लिए उत्सुक हैं? लगभग सब सभी। तो महाराज उधर बोले, इसका मतलब आप सब द्वारकावासी है, वृंदावनवासी नहीं है। वृंदावनवासी कृष्ण का केवल मुरली सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। ऐसा करके ऐसे ही ठीक है। हमको अभी तो शंख का भी ध्वनि अगर सुनने की उत्सुकता है तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आगे जाके केवल मुरली की अपेक्षा हमको होनी चाहिए, मुरली का ध्वनि। क्योंकि वृंदावन में ही केवल भगवान मुरली हो जाते हैं। तो अपने अपने रुचि के हिसाब से। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं, मुझे आपका वो वेश मुझे आपको आपका देखना था। तो महाप्रभु ने की कृपा से उनको वो रूप भी दिखा और महाप्रभु ने उनको बताया कि आप व्रज में जाओ, रूप और सनातन गोस्वामी के संग में रहो और वैष्णव स्मृति की रचना करो। विविध प्रकार के संस्कार वैष्णव तरीके से कैसे किए जाते हैं उसके बारे में आप लिखो। और आपकी माता पिता के अभी सेवा करो, वृद्ध माता पिता हैं, जब तक उनका देहावसान नहीं होता तब तक आप उनकी सेवा करो। जैसे आपके माता पिता वैकुंठ चले जाते हैं तब आप वृंदावन की ओर पधारिए, जैसे वो वैकुंठ जाते हैं आप वृंदावन की ओर जाइए। तो इस प्रकार से अच्छे बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। और जब ही उनका देहावसान हुआ तो उसके पश्चात महाप्रभु की आज्ञा का पालन करके वृंदावन की ओर चल दीजिए। और वृंदावन में जाकर उन्होंने कृष्ण करणामृत जो बिल्व मांगल ठाकुर जी ने लिखा है उसके ऊपर कृष्ण वल्लभा टीका लिखी, जो षट संदर्भ है जीव गोस्वामी को उसका उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसका जो लेखनकार के रूप में जीव गोस्वामी को पहचाना जाता है, लेकिन उसकी मूल रचना की है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। जीव गोस्वामी ने उसको पश्चात उसको संदर्भ के रूप में इकट्ठा किया, लेकिन लिखाई का काम उसे जो मूल लेखक जो है, ग्रंथकर्ता जो है, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ही है। इतना ही नहीं, हरिभक्ति विलास के भी ग्रंथ रचनाकार गोपाल भट्ट गोस्वामी है। पश्चात सनातन गोस्वामी ने उसको और आगे बढ़ाया, विस्तार किया। और इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ही उनको महाप्रभु के प्रति उधर जाके भी विरह में थे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, और महाप्रभु ने उनको बताया कि आप नेपाल के ओर चले जाओ, गंडकी की ओर, गंडकी में स्नान करो तो आगे आपको मार्ग दिखेगा। तो नेपाल की ओर चल दिए गोपाल भट्ट गोस्वामी। बीच में एक जगह पे माधव प्रसाद करके एक बड़े भक्त थे, उनके दो पुत्र थे दामोदर और गोपीनाथ, उसमें से एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरे गृहस्थ बने। तो दोनों गोपाल भट्ट गोस्वामी के मुख्य शिष्यों में से हैं, श्रीनिवास आचार्य भी एक मुख्य शिष्य हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के दोनों शिष्य बन गए। उनके बारे में थोड़ा सा आगे अगर समय है तो बताएंगे हम। तो द्वादशी के दिन सुबह गंडकी में स्नान करते करते वो जल की अंजलि अर्पण करना चाहते थे गंडकी को। तो जैसे उन्होंने जल उठाया तो हाथ में उनको दामोदर शालिग्राम शिला दिखाई दी, प्रकट हुई हाथ में। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये भगवान की क्या है इच्छा है कि मैं इनकी सेवा करूं। और बाद में अपना जलपात्र उठाया तो जलपात्र में 11 शालिग्राम शिलाओं ने पहले ही प्रवेश कर दिया था अपने आप। तो जो शालिग्राम शिला जो होती है उनको प्रतिष्ठापना करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं विष्णु के, भगवान कृष्ण के रूप है। तो इस प्रकार उनको वो वापस लेके आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण की उनका स्मरण होता है। तो लेकिन मैं आपको वो रूप में सजा नहीं सकता क्योंकि आपका गोलाकार रूप है, शालिग्राम आपने देखा होगा गोलाकार रूप में है, तो आपके विग्रह रूप में मेरे को कैसे दिखेंगे आपकी, जिनसे मैं आपको सजा सकता हूँ, कौपिन पहना सकता हूँ, धोती पहना सकता हूँ, पगड़ी पहना सकता हूँ, श्रृंगार कर सकता हूँ। ऐसा विरह में सोच रहे हैं वो ऐसा। तो कहते हैं कि जैसे ही उनका विरह तीव्र हो गया, तो जैसे गोपियों का विरह तीव्र हुआ, रास के बीच में अचानक क्या हुए, भगवान अंतर्धान हुए, और जब भी गोपियों ने आर्त स्वर में पुकारा तो भगवान प्रकट हुए। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आर्त स्वर में पुकारा, तो हमारी एक उर्मिला माता जी करके एक हैं इस्कॉन में, तो वो कहती हैं कि कृष्ण हमसे एक विचार दूर है, केवल कितने दूर हैं, एक विचार की दूरी है हम में और कृष्ण में। मतलब वो विचार अगर कृष्ण के बारे में हो तो कृष्ण हमारे पास में है। तो इस प्रकार जो शालिग्राम शिला थी, दामोदर शिला, तो उसमें से नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन यानी वैशाखी पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमण प्रकट हो जाते हैं। वो शिला की जगह पर श्री राधा रमण प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो पूजा करने वाले गोस्वामी हैं वो बताते हैं कि अभी भी राधा रमण के पीछे दोनों कंधों पर चक्र के निशान है, जो दामोदर शिला में थे जहाँ से वो प्रकट हुए, उसके चक्र के निशान अभी भी उनके दोनों कंधों में पीछे हैं, और एक ऊर्ध्व रेखा भी है जो दामोदर शिला पर रहती है, उसी से दामोदर शिला की पहचान होती है। तो कह रहे पीठ पर रेखा दो अंसन में चक्र, सोले अंगूर को वपु श्याम अनुपम तन है, गोविंद देव को सो मुख। मुख कैसा था उनका, गोविंद देव जैसा। अभी इसमें जो नरहरी चक्रवर्ती का जो भक्ति रत्नाकर है उसमें बताया कि राधा रमण का मुख गोविंद देव जैसा है, एक और विचार के हिसाब से उनका मुख गोपीनाथ जैसा है, लेकिन ठीक है तीनों विग्रह हैं उधर है? तो गोविंद देव को सो मुख, गोपीनाथ को सो हिय, ये जो मध्य भाग किस किसके तरह गोविंद के गोपीनाथ के जैसा। मदन गोपाल के से राजत चरण है, चरण कैसे, मदन गोपाल जैसे, मदन मोहन। वैशाख मास पूरन मासी चंद्रवान पुनि, 1599 संवत वरण है, 1599 में संवत्सर के हिसाब से। विशाखा नक्षत्र सानुकूल निशिशेष, शालिग्राम जब भय राधिका रमण है, शालिग्राम राधा रमण बन गए। तो अभी आप पूछेंगे कि ये राधा रमण जो है उनके बाजू में राधा रानी क्यों नहीं दिखाई देती, है किसी के मन में प्रश्न? किन किन के मन में प्रश्न है उनके बाजू में राधा रानी क्यों नहीं दिखाई देती? तो उसका उत्तर ऐसा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जानते थे, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, ये सम्मोहन तंत्र में शिवजी पार्वती को बता रहे हैं, शिवजी पार्वती देवी को सम्मोहन तंत्र करके शास्त्र है उसमें बता रहे हैं। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत, जपेद्वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे, तस्मा ज्योतिर भुद्विधा राधा माधव रूपकम। शिवे मतलब है पार्वती, गौर तेज के बिना यानी राधा रानी के बिना जो श्याम तेज को अर्चना करता है, जो कृष्ण की अर्चना करता है या उनका जप करता है या उनका ध्यान करता है, तो कृष्ण का ध्यान अर्चना जप राधा रानी के बिना जो करता है, स भवेत पातकी शिवे, वो पातकी बन जाता है। ऐसा करके कह रहे हैं, इसलिए राधा माधव दोनों को साथ में ही अर्चा, ध्यान और जप दोनों का साथ में, इसलिए हम क्या करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं ना। तो ये सम्मोहन तंत्र में कहा गया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो भली भांति जानते थे इसको, फिर भी पांच कारणों के लिए उन्होंने राधा रानी की अलग से विग्रह स्थापन नहीं किया। क्यों? पहला कारण था कि वो समझते थे कि गौरांग महाप्रभु ही स्वयं राधा रमण के रूप में प्रकट है, तो गौरांग महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही राधा रानी के भाव में है, तो पहले ही राधा रानी का भाव भी उधर विराजमान है ऐसा वो समझते थे। दूसरा कारण, श्री राधा रमण में राधा रानी का नाम पहले से ही है, श्री राधा रमण, तो वापस एक नाम जोड़ के श्री राधा राधा रमण ऐसा बोलने से श्री राधा रमण में भी लोग समझ जाएंगे सब कुछ कि ये राधा रानी रानी के ही रमण है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था कि शालिग्राम से स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए पुनः प्रतिष्ठित अलग विग्रहों को लेकर पुनः प्रतिष्ठा करना राधा रानी का वो उन्होंने समुचित नहीं समझा, क्योंकि राधारमण तो स्वयं शिला से प्रकट हुए थे, तो हाँ अलग से लाकर दूसरे विग्रह को प्रस्थापित करना उनको सुसंगत नहीं लगा। चौथा कारण बोलते हैं कि राधा रानी के नाम का उल्लेख भागवतम में और अपने आचार्यों ने संपुटित रूप से किया है, गुप्त रूप से, ऐसे प्रकट रूप से उल्लेख नहीं किया है। भागवतम में एक ही बार उल्लेख आता है, कई बार आता है लेकिन गुप्त रूप से आता है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वरा। सनातन गोस्वामी टीका में राधितो का मतलब राधा का अर्थ बताते हैं, राधयति आराधयति सा राधा, यानी ये भी नहीं बता रहे कि वृषभानु की जो नंदिनी है वो राधा है, या कीर्तिदा की पुत्री है वो राधा है, जो कृष्ण की आराधना करती है वो राधा है, इतना बोल के सनातन गोस्वामी उधर अपनी और आगे नहीं लिखते उसके बाद। तो इस प्रकार देखते हैं हमारे आचार्य, हालांकि अपने ग्रंथों में उन्होंने प्रकाशित किया है राधा रानी का महिमा, लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं रखा है। और दूसरा पांचवा चीज, जानवा देवी के इच्छा से पहले सारे विग्रह बिना राधा रानी के ही पूजित हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि मदन मोहन के साथ भी राधा रानी नहीं थी, प्रकट रूप में नहीं थी, गुप्त रूप में सदैव हृदय में थी। गोपीनाथ के साथ भी नहीं थी, गोविंद देव के भी साथ नहीं थी, क्योंकि वज्रनाभ ने तो केवल कृष्ण के ही मूर्तियां घटन करी थी, है ना, वज्रनाभ यानी कृष्ण के जो परपोते हैं उन्होंने। तो ऐसा मान के करते थे पूजा की मदन मोहन के हृदय में ही राधा रानी है, या गोविंद देव के हृदय में ही राधा रानी है। लेकिन जानवा देवी को ऐसा लगा कि नहीं नहीं, राधा रानी अलग से भी दिखनी चाहिए सामने। तो उन्होंने सबके लिए विग्रह बना दिए, मदन मोहन के लिए राधा रानी के विग्रह बनवा दिए, आपने पुरुषोत्तम जाना जो प्रताप रुद्र महाराज के बेटे थे उनसे सबके लिए बनवा दिए, तो हाँ राधा रमण के लिए भी एक राधा रानी का मूर्ति का निर्माण किया गया, और उनको लेकर आई जानवा देवी श्रीनिवास आचार्य, और इनको कही कि आप उनको क्या कीजिए, राधा रमण के साथ में उनकी प्रस्थापित कीजिए, उनको प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी द्विधा में पड़ गए, एक जो पांच कारण हमने बताए थे इसलिए वो गोपाल भट्ट केवल उनकी। अच्छा, वो राधा रानी तो बाजू में है, आप अगर जाएंगे राधा रानी की सेवा होती है उधर, अभी भी होती है, और तभी भी होती थी गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय, राधा रमण के साथ में राधा रानी का नाम लिखकर वो नाम की सेवा होती थी, और अभी भी होती है, श्री राधा करके नाम लिखा है और वो गद्दी पे रखी हुई है उनको, मतलब सिंहासन में बाजू में ही राधा रमण के बाई ओर, अपने दाई ओर, हाँ तो उधर आपको दिखेगा एक आसन जैसा, तो उसमें राधा रानी का नाम लिखा है, नाम की उपासना होती है, नाम और विग्रह अलग नहीं है, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप। तो बाद में सोचने लगे अभी मैं राधा रानी के विग्रहों की अगर प्रस्थापित करूंगा तो मैंने जो पहले कारण बताए थे उसकी हानि हो जाएगी, और अगर जानवा माता नित्यानंद प्रभु की पत्नी जो है परम वैष्णवी उसका नहीं सुना तो महद अपराध हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, ऐसा सोचने लगे। तो राधा रमण जी सपने में आकर उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके जो गोस्वामी का जो परंपरा में उन्होंने एक पुस्तक लिखा है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसी को आधार लेकर हमने लिखा है, मतलब उसी से पूरा लिया है ये संदर्भ। तो क्या कहते हैं राधा रमण जी, राधा रमण भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या कहते हैं, गोपाल भट्ट श्री राधा जी की जो मूर्ति आई है वो मूर्ति मोते बड़ी है, समझ में आया, ये ब्रज भाषा में लिखा है, वो मूर्ति मेरे से बड़ी है, तैने देखी ना है का। मतलब क्या, आपने देखी नहीं है क्या, हाँ वो मूर्ति बड़ी है मेरे से, बताओ ये मोपे कैसे संभरेगी। बताओ ये इनको मैं कैसे संभाला, मेरे से बड़ी मूर्ति है इनकी। ऐसे कह रहे, कहूं द्वे राधा हूं भाई है जो तुम इन्हें मेरे ढिंग बैठाओगे। मतलब क्या आप अभी दो राधा रानी हो गई है जो इनको भी आप मेरे साथ में बैठाओगे, द्वे राधा रानी भाई है, जो आप इनको मेरे ढिंग मतलब मेरे पास बिठाओगे। तो पहले ही नाम रूप में सेवा हो रहा है तो उसको राधा रमन राधा रानी समझ रहे हैं, मतलब राधा रानी उपस्थित है उधर। बताओ इन मेरी पास वाली प्यारी जू को कहाँ बिठा रहोगे? और मेरे जो पास वाली अभी राधा रानी जो बैठी है उसको कहाँ भगाओगे अगर ये दूसरी राधा रानी को लेकर आ गया तो? वृथा की बात छोड़ो, वृथा बात मत करो, प्रकृत विषय अवलंबन करो। अभी जो मैं बता रहा हूँ ऐसा करो, ये साक्षात योगमय शक्ति बंगाल से आई है, ये राधा रानी नहीं है। ये जो नई मूर्ति आई है वो योग माया है, उसका नाम गौड़ी देवी है, गौड़ी गौड़ गौड़ से आई इसलिए गौड़ी यानी गौड़ देश से आई है। तो आप उनका आदर सम्मान करके दामोदर के हाथन उनके पूर्वजन के स्थान गौड़ ग्राम भेज देवो। गौड़ ग्राम क्या है? गुड़गांव। तो गुड़गांव को भेजा जाता है उनको, वहां मेरे आदेश प्रकार से वो पूजित होएंगी और भविष्य में हमारे पारिवारिक जनों की आराध्य देवी के रूप में मानी जाएंगी, यह मेरी आज्ञा है। जामे संशय मत रखो, कुछ मन में संशय मत रखो, तुम्हें आज्ञा अवमानना का कछु दोष ना लागेगो। आपको आज्ञा पालन का कुछ दोष नहीं लगेगा। तो ये उनके सपने में आकर भी कहते हैं, राधा रमन जानवा देवी के भी सपने में आकर कहते हैं कि ऐसी मेरी इच्छा है करके, और श्रीनिवास आचार्य तीनों के सपने में साथ में आते हैं, क्या बोलते हैं वो लाइव टेलीकास्ट, तीनों के दूरदर्शन में साथ में होता है। तो इस प्रकार से अभी गुड़गांव में फिर उनको लिया जाता है, जो नई मूर्ति आई थी वो योग माया की थी, और जो राधा रमन के जो सेवाइट हैं उनकी वो हर साल यात्रा करते हैं और किसी स्नातक किसी को बनाते हैं तो उनको उनके सामने बनाया जाता है। तो ये सब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की महिमा है। और अभी इस समय हुआ है कितना समय, 5 मिनट और, तो यहाँ पे अभी हम कथा को विराम देते हैं और अभी इसके पश्चात आरती होगी। और हाँ, पहले जयानी लोग आएंगे, फिर आरती होगी और फिर उसके पश्चात सबके लिए महाप्रसाद। हरे कृष्ण। जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।
जयानी लो प्रेम धना करुणा प्रचो, जयानी लो प्रेम धना करुणा प्रचो, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट युग कहा कवीराश कहा मोर भट्ट युग कहा कवीरा एक काले कोथा गेला गोर नटराज एक काले कोथा गेला गोर नटरा पाषाणे कुटी बो माथा अनले पशिबो गौरांग गुणे रानिधि कोथा गेले पाबो सब संगीर संगे जे कोई लो विलास से सब संगीर संगे जे कैलो विलास से संगा न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचोर हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय
जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर संसारद नललीडलोक प्रणय कारुण्य गनागनात्वा प्राप्तस्य कल्याणगुणान्वस्य वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्द महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना